आर्यन का कमरा आधी रोशनी में डूबा हुआ था। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दे को हिला रही थी। वो बिस्तर पर आधा लेटा था, सिर्फ पैंट में। उसकी शर्ट कहीं कुर्सी पर पड़ी थी। दोनों बाहें उसने चादर पर फैला रखी थीं, जैसे खुद को पूरी तरह खुला छोड़ दिया हो। आंखों में हल्की सी मदहोशी थी। बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। अदिति अंदर आई। उसकी चाल में आज गुस्सा भी था और इरादा भी। वो कुछ पल दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। आर्यन ने हल्की बेचैनी के साथ उसे देखा। अदिति, कम ऑन, उसकी आवाज़ में कामुकता और बेचैनी दोनों थीं। अदिति ने जवाब नहीं दिया। वो बिस्तर तक पहुंची और धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। उसके बाल कंधों से सरक कर आगे आए। उसने झुककर आर्यन के चेहरे के पास आते हुए फुसफुसाया, तुम मेरे हो, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आर्यन की आंखों में चमक उभरी। सजा दोगी, उसने धीमे से कहा। अदिति की उंगलियां उसके सीने पर आ टिकीं। हाँ, ये सजा है, मुझे पार्टी में अकेला छोड़कर जाने की। उसने हल्के से झुककर उसके सीने पर अपने होंठ रखे, एक लंबा ठहरा हुआ चुंबन। आर्यन की सांस गहरी हो गई। तुम्हें अंदाज़ा है आज मैं क्या करूंगी, उसने उसके सीने पर उंगलियों से लकीरें बनाते हुए कहा। आर्यन ने उसकी कमर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़कर चादर पर वापस रख दिया। नहीं, उसने धीमे से कहा, आज तुम बस महसूस करोगे। उसकी आवाज़ में गर्माहट थी। वो झुककर उसके कंधे से लेकर सीने तक हल्के हल्के चुंबन देती चली गई। आर्यन की सांसें अब बेकाबू हो रही थीं, उसका सीना उठ गिर रहा था। अदिति, उसकी आवाज़ भारी हो गई। चुप, उसने कामुकता से कहा, तुमने मुझे नज़रअंदाज किया था, अब मैं तुम्हें करूंगी। उसकी उंगलियां उसके सीने पर घूमती हुई नीचे आईं, पेट तक। आर्यन का बदन सिहर उठा। वो पूरी तरह उसके सामने झुकी हुई थी, घुटनों के बल उसके ऊपर हल्की सी झुकी। वन पीस नाइटी एकदम ट्रांसपेरेंट थी। आर्यन अब उठना चाहता था, उसे बाहों में भरना चाहता था, लेकिन अदिति की नज़रें उसे रोक रही थीं। वो चाहती थी कि आज नियंत्रण उसके हाथ में हो। देखो मुझे, उसने धीमे से कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वो गहरी, चुनौती से भरी थीं। अदिति ने उसके सीने पर फिर से चुंबन रखा, इस बार थोड़ा नीचे। उसकी उंगलियां अब उसकी कमर तक आ चुकी थीं। आर्यन की उंगलियां चादर को कसकर पकड़ रही थीं। तुम मुझे तड़पा रही हो, उसने तभी आवाज़ में कहा। अदिति उसके और करीब झुकी, उसके होंठ उसके कान के पास आए। उसकी आवाज़ में हक और वाइल्डनेस साफ थी। यही तो चाहिए था मुझे। उसकी सांस उसकी त्वचा से टकराई तो आर्यन का शरीर तन गया। वो फिर सीधी हुई और उसके पैंट की बेल्ट पर उंगलियां टिकाईं। एक पल के लिए उसने उसे देखा। आज, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम सिर्फ मेरे हो। उसने धीरे धीरे बेल्ट की पकड़ ढीली करनी शुरू की। हर छोटी आवाज़ कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन की आंखें अब मदहोशी से भी गहरी थीं, उसमें चाहत साफ थी। अदिति उसके ऊपर झुकी, इतनी करीब कि उसकी सांसें उसके होंठों को छू रही थीं। अब, आर्यन ने भारी आवाज में पूछा। अदिति मुस्कुराई। अब तुम मुझे रोकोगे या फिर पूरी तरह मेरे हवाले हो जाओगे? उसकी उंगलियां बेल्ट पर रुकी हुई थीं। कमरे में तनाव इतना घना था कि हवा भी भारी लग रही थी। आर्यन ने आखिरकार अपनी बाहें उठाई और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब वो उसके ऊपर थी और दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अदिति ने उसकी गर्दन पर होंठ रखे। ये सजा अभी खत्म नहीं हुई, उसने फुसफुसाया। और कमरे की रोशनी में दोनों की चाहत अब साफ दिख रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी अब भी जल रही थी। खिड़की से आती हवा दोनों के बालों को छू रही थी। आर्यन कलंग पर आधा लेटा हुआ था, सिर हेडबोर्ड से टिका हुआ, पैर सामने फैले हुए। अदिति उसके ऊपर झुकी थी, उसके सीने पर बिखरे बालों के साथ। उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ टिकाए और एक गहरी सांस ली, जैसे उसका गुस्सा अब भी भीतर धधक रहा हो। तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितना बुरा लगा था, उसकी आवाज़ धीमी थी मगर उसमें आग थी। आर्यन ने उसे बाहों में भरना चाहा, मगर उसने उसके हाथ हल्के से रोक दिए। नहीं, आज नहीं, आज तुम कुछ नहीं करोगे, उसने उसके सीने पर हल्का धक्का देते हुए कहा। वो उसके ऊपर बैठ गई, उसकी कमर के दोनों तरफ घुटनों के बल। उसकी नाइटी हल्की थी, बाल कंधों पर फैले हुए। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उसी गुस्से में चाहत भी छिपी थी। आर्यन ने उसे देखा बिना कुछ कहे, जैसे सच में खुद को उसके हवाले कर चुका हो। तुम पार्टी छोड़कर चले गए और मैं वहां अकेली, उसने उसकी शर्टलेस छाती पर हल्की रेखा खींचते हुए कहा। मुझे लगा तुम समझोगी, आर्यन ने धीमे से कहा। मैं समझती हूँ, उसने तुरंत जवाब दिया, पर मैं महसूस भी करती हूँ। उसकी उंगलियां अब उसके सीने से पेट तक सरक आईं। हर स्पर्श में हल्की सख्ती थी, जैसे वो उसे सजा दे रही हो पर उसी में प्यार छिपा हो। आर्यन की सांसें गहरी हो रही थीं, उसने आंखें बंद कर लीं। अदिति झुकी और उसके कंधे पर हल्का सा दांतों का निशान छोड़ दिया, ज्यादा नहीं, बस इतना कि उसे एहसास हो। ये तुम्हारी लापरवाही के लिए, उसने फुसफुसाया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। और बाकी, उसने धीमे स्वर में पूछा। अदिति ने उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर चादर पर रख दिए, खुद उसके और करीब आ गई। बाकी ये कि तुम सिर्फ मेरे हो और जब मैं चाहूं, जैसे चाहूं, तुम्हें अपना बना सकती हूं। उसने उसके सीने पर अपना माथा टिका दिया। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे, कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। फिर अचानक अदिति ने उसे बिस्तर पर पीछे की ओर दबाया और खुद उसके ऊपर झुक गई। अब उसका चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था। देखो मुझे, उसने कहा। आर्यन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई विरोध नहीं था, सिर्फ चाहत और अपनापन। अदिति ने उसके होंठों को छुआ, धीरे, फिर थोड़ा गहराई से। उसका गुस्सा अब चुंबनों में बदल रहा था। वो उसे बार बार चूम रही थी, जैसे दिन भर की सारी नाराजगी उसी में घोल देना चाहती हो। आर्यन ने इस बार उसे नहीं रोका। उसके हाथ अब भी ऊपर थे, जैसे उसने सच में सरेंडर कर दिया हो। अदिति उसके ऊपर बैठी थी, उसके बाल आर्यन के चेहरे को छू रहे थे। उसने उसके कान के पास छुपकर कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो मैं और भी पागल हो जाती हूँ। मुझे पता है, आर्यन ने धीमे से कहा, और मुझे तुम्हारा ये पागलपन पसंद है। अदिति ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी गर्दन पर फिर से होंठ रखे। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे नरम हो रहा था। वो उसके सीने पर लेट गई, पूरा बदन उसके बदन से लगा हुआ। दोनों की धड़कनें एक सी हो चुकी थीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, उसने पहली बार अपने गुस्से के पीछे की सच्चाई कही। आर्यन ने अब धीरे से अपने हाथ नीचे लाकर उसकी पीठ पर रखे। इस बार उसने उसे नहीं रोका। मैं कहीं नहीं जा रहा, उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, पर कभी कभी मुझे समझने की कोशिश भी किया करो। अदिति ने हल्का सा सिर उठाया, तो समझाओ, ऐसे नहीं कि मुझे अकेला छोड़ दो। वो फिर से उसके करीब झुकी। इस बार उसके चुंबन में गुस्सा कम और अपनापन ज्यादा था। वो उसके सीने पर हाथ फेरते हुए उसे महसूस कर रही थी, जैसे हर धड़कन को अपने नाम कर लेना चाहती हो। आर्यन ने उसे धीरे से करवट दिलाई। अब वो बिस्तर पर उसकी बगल में थी और आर्यन उसके ऊपर हल्का सा झुका हुआ। अब मेरी बारी, उसने मुस्कुराकर पूछा। अदिति ने उसकी शर्ट रिस्ट चाटी कर हाथ रखकर कहा, आज नहीं, आज तुम बस मुझे थामे रहो। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके सीने से लगी हुई थी, उसका चेहरा उसके कंधे के पास। अदिति की उंगलियां अब भी उसके सीने पर खेल रही थीं, पर अब उनमें सख्ती नहीं थी। वो उसे छूते हुए शांत हो रही थीं। कमरे की रोशनी हल्की थी, खिड़की से आती हवा दोनों के बालों को छू रही थी। मैं गुस्से में थोड़ी वाइल्ड हो जाती हूँ, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हें उसी रूप में भी चाहता हूँ। वो दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे में उलझे रहे। उनकी हर हरकत अब सुकून से भरी थी, गुस्से की आग पिघल कर अपनापन बन चुकी थी। अदिति ने उसकी छाती पर हल्का सा दिल बनाया, याद रखना, ये मेरा है। आर्यन ने मुस्कुराकर उसकी ठोड़ी उठाई, और तुम पूरी की पूरी मेरी। इस बार उनका चुंबन धीमा था, गहरा था, पर शांत था। अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस दो लोग थे जो एक दूसरे के करीब होकर सारी नाराजगी भूल रहे थे।
कुछ देर बाद अदिति उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई। आर्यन ने चादर दोनों पर खींच दी। कमरे में अब सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा भारी नहीं, सुकून भरा था। गुस्सा, वाइल्डनेस, चाहत सब एक ही एहसास में बदल चुके थे, और उस आधी रोशनी वाले कमरे में दोनों बस एक दूसरे को थामे हुए थे, जैसे यही उनकी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ी राहत हो।